चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषम् तमहं भजामि वेणुं कणन्तमरविन्द दलायताक्षम् बर्हावतं समसितां हृदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्मनमाल्यवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रस्तिन्य विचिन्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यद्भावभाविव यो मनुजास्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषः सूक्तैर्यमेव निगमः प्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटीश्वशेषवसुधाधिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वम् विशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि नन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्सं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा नुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हि दशान्तरमप्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणाणवजले भजति स्म योग निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्ति गोविन्दमादिपुरुषम् यस्यैकनिःश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् सह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य विन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुदिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्याव्यया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोऽर्थपापनिचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवः यद्दत्तमात्रविभव प्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्वेन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्त्य तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयितोऽयममृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दम् ज्योतितरमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिसुवतिसुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समय भजे श्वेतद्वीपम् तमहमिह गोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज सुबह का भागवतम सत्र होगा। हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु द्वारा। हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। कृपया सभी आए हुए भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो जिनको जिनको प्रसाद का कूपन ना मिला हो सबसे पहले प्रसाद कूपन ले लें ताकि प्रसाद लेने में आपको दिक्कत ना हो। हरे कृष्णा।
कुंज बिहारी
जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन लाभ गिरिवर, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यश जमुना तीरा वनचारी, यमुना जमुना तीरा वनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा आप लोगों को तकलीफ हो रही है ना गाने में, सिंपल गाते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय श्री राधा गिरिधारी। जमुना तीरा वनचारी, यमुना जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधे जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन डिविटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की निताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरहे नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 32। यद्यं क्रियते भक्षस् तर्हि मां खादपूर्वतः न जीविष्ये विनायेन क्षणं च मृतकं यथा। यद्ययं क्रियते भक्षस् तर्हि मां खादपूर्वतः न जीविष्ये विनायेन क्षणं च मृतकं यथा। यद्ययं क्रियते भक्षस् तर्हि मां खादपूर्वतः न जीविष्ये विनायेन क्षणं च मृतकं यथा। यदि यदि अयम यह ब्राह्मण क्रियते स्वीकार किया जाता है भक्षः खाद्य तर्हि तब तो माम मुझको खाद खा लो पूर्वतः उसके पूर्व न नहीं जीविष्ये मैं जीवित रहूंगी विना बिना येन जिसके क्षणम च एक पल भी मृतकम शव यथा सदृश। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना मृतक तुल्य हूं। तात्पर्य, वैदिक संस्कृति में सती या सहमरण प्रथा है, जिसमें स्त्री अपने पति के साथ मरती है। इस प्रथा के अनुसार यदि पति मर जाता है तो पत्नी जलती चिता में अपने पति के साथ जल जाती है। इस श्लोक में एक ब्राह्मण पत्नी द्वारा इस संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। पति विहीन स्त्री शव तुल्य है, अतएव वैदिक संस्कृति के अनुसार कन्या का विवाह होना आवश्यक है। यह उसके पिता का उत्तरदायित्व है, भले ही कन्या का दान कर दिया जाए अथवा पति के एक से अधिक पत्नियां हों, किंतु कन्या का विवाह होना ही चाहिए। यही वैदिक संस्कृति है। स्त्री को सदैव पराश्रित माना जाता है। बचपन में वह अपने पिता पर और वृद्धावस्था में अपने सयाने पुत्रों पर आश्रित रहती है। मनुसंहिता के अनुसार वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। स्त्री स्वाधीनता का अर्थ है कष्टमय जीवन। इस युग में कितनी ही लड़कियां अविवाहित हैं और वे झूठे ही अपने को स्वतंत्र समझती हैं, किंतु उनका जीवन कष्टमय है। यहाँ ऐसा दृष्टांत है जिसमें एक स्त्री यह अनुभव करती है कि अपने पति के बिना वह शव मात्र है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो राजा सौदास की कथा चल रही है, किस प्रकार श्राप मिला उन्हें। वैसे ये कथा हम सब के लिए एक बहुत सुंदर उपदेश प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार एक राजा को प्रजा या अन्यों के पाप का फल भोगना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा है इन पहले के श्लोकों में कि राजा सौदास ने तो कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उसके एक रसोइये ने, रसोई बनाने वाले जो भी एक असुर था, वो राक्षस था, उसकी गलती का फल राजा को भुगतना पड़ा। तो जो राजा होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको अपने आश्रितों के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसका वर्णन कई स्थानों पर हुआ है। यमुनाचार्य की एक कथा आती है, जब छोटे से बालक थे यमुनाचार्य अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, और ऐसे समय में राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, बुला कर लाओ गुरु को, यहां पर आकर वाद विवाद करें। एक प्रकांड पंडित आए हैं, दिग्विजय पंडित, उनसे वाद विवाद करें, अगर जीत जाएं तो ठीक है, नहीं तो सिग्नेचर हस्ताक्षर करें कि हार गए। तो यमुना उस समय अकेले थे आश्रम में, छोटे बालक थे, तो वो आए, वाद विवाद प्रारंभ हुआ, बहुत से प्रश्न हुए। उनमें से एक प्रश्न था कि यमुना ने कहा कि मेरी बातों का खंडन करना शास्त्र के आधार पर, और यमुना ने कहा कि राजा बहुत पुण्यवान है। तो राजा बैठे थे सामने, तो यमुना ने कहा राजा बहुत पुण्यवान है। अब जो दिग्विजय पंडित था उसको इस बात का खंडन करना था, अर्थात राजा पुण्यवान नहीं, बड़ा पापी आदमी है। अब वो कैसे कर सकता है? अगर राजा के सामने ऐसे करेगा तो राजा तो गर्दन काट देगा उसकी, और अगर नहीं करेगा तो फिर दिग्विजय पंडित नहीं रहेगा। तो बड़ा भ्रम में पड़ गया वो कि एक ऐसा प्रश्न कर दिया। और भी प्रश्न किए थे उसने, एक और प्रश्न किया था कि खंडन करो कि जो रानी है ये, अरे उसकी माँ के बारे में भी कहा था कि तुम्हारी माँ बांझ है, बांझ नहीं है, ये खंडन करो, मतलब ये साबित करो कि तुम्हारी माँ बांझ है। अरे जब पुत्र को संतान उत्पत्ति कर दी फिर बांझ कैसे रही? तो ऐसे सब कहा उसने यमुना ने। तो उनमें से एक प्रश्न था कि ये साबित करो कि राजा पुण्यवान है, इसको खंडन करो। तो दिग्विजय पंडित हार गए, उन्होंने कहा ये सब हो नहीं सकता, मैं अपनी माँ को कैसे बांझ साबित कर सकता हूँ, राजा को कैसे पापी कर। तो बहुत क्रोध में आ गया कि ये बालक, इसको पता नहीं है क्या बोल रहा है, राजन आपका अपमान कर रहा है, इसको दंड देना चाहिए। तो राजा ने कहा दंड तो देंगे लेकिन पहले इसकी बात भी सुननी चाहिए। तो इसने आपसे कहा इस बात का खंडन करो, आप नहीं कर सके, आप अपनी हार मानते हैं। तो उन्होंने कहा तो अब इसको कहना चाहिए कि तुम बताओ कि कैसे हो सकता है। तो उस समय यमुना ने कहा कि राजा की जितनी भी प्रजा होती है मनुष्य संहिता के अनुसार, उसका एक छठा भाग राजा को जाता है। तो भले ही राजा ने पाप नहीं किए हैं लेकिन इतनी सारी प्रजा है जो पाप कर रही है, उनका फल राजा को लग रहा है। इसीलिए राजा केवल पुण्यवान नहीं है, पाप का भागी है, इसीलिए राजा भी पापी है। तो उसको स्वीकार करना पड़ा। दूसरा प्रश्न किया था कि तुमने कहा कि मेरी माँ बांझ नहीं है, इसका खंडन कैसे करे? बांझ मतलब वो स्त्री जिसके संतान नहीं होती है, तो इसका खंडन कैसे हो सकता है? तो यमुना ने कहा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस स्त्री के केवल एक संतान होती है वो बांझ के समान है। तो फिर उसने साबित किया और यमुनाचार्य उस समय जीत गए। तो ये उस समय आया था प्रसंग कि राजा को अपनी प्रजा के पाप का फल लेना पड़ता है, पाप का भागी होता है राजा। तो यही सौदास की कथा में हम लोग देखते हैं, उसने कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं, सेवा करना चाहते थे ऋषि की, लेकिन फिर भी किसी अन्य के कार्य करने से उनको पाप भोगना पड़ा। और भी हम लोग सीखते हैं कि ऋषि ने भी बिना जाने बिना समझे श्राप दे दिया। तो इसलिए जो व्यक्ति जिम्मेदार पद पर हैं उन्हें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके जो भक्त हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बाहरी लक्षणों से हमें किसी व्यक्ति के विषय में अपने विचार नहीं बनाने चाहिए। वैसे वैष्णवों के बारे में तो कभी नहीं बनाने चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि बाहरी दृष्टि से अगर किसी वैष्णव को जाना जाए, चाहे उसकी जाति हो या उसका शरीर हो या अन्य चीजों से, तो एक अपराध होता है, तो ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये कथा ऐसे चल रही है। बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं इन पिछले श्लोकों में, आप सबने ये सुने होंगे। और आज का श्लोक स्त्री धर्म के विषय में चर्चा कर रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ब्राह्मण की पत्नी याचना कर रही है कि अगर मेरे पति नहीं रहे तो मेरे लिए जीवन का कोई लाभ नहीं है। वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को बहुत मान दिया जाता है। केवल एक ही ऐसी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, जहां स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और भागवत प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, बहुत से भक्तों की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन भागवत में सबसे पहला स्थान प्रार्थना करने का एक स्त्री को दिया गया, कुंती महारानी, उनकी सबसे पहली प्रार्थनाएं हैं। और फिर आगे बहुत से लोगों की प्रार्थना, शिव जी की भी प्रार्थना है, लेकिन पहला स्थान एक स्त्री को दिया गया। तो स्त्री ये वैदिक सभ्यता में शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार बड़ी सम्माननीय है। अथर्ववेद में कहा गया है स्त्री के विवाह के समय कि जब स्त्री विवाह करती है तो अथर्ववेद कहता है कि जब वो घर में जाती है अपने पति के, तो वो इस प्रकार जाती है मानो एक नदी समुद्र में मिल रही हो। और वो वहां पर, अथर्ववेद में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि वो वहां पर एक रानी की तरह जाती है राज्य करने के लिए बाकी सब लोगों पर। अर्थात महत्व दिया है स्त्री को कि स्त्री की स्थिति बहुत ऊंची है वैदिक सभ्यता में। भीष्म देव भी जब युधिष्ठिर महाराज को धर्म का वर्णन करते हैं तो कई धर्मों का वर्णन किया भीष्म देव ने। भीष्म देव ने वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया, क्षत्रिय धर्म का वर्णन किया, राज धर्म का वर्णन किया और स्त्री धर्म का वर्णन किया, कि महाभारत में वर्णन आता है। तो स्त्री धर्म का वर्णन करते हुए भीष्म देव कहते हैं कि जिस वंश में किसी स्त्री का अपमान होता है वो वंश पूरा समाप्त हो जाता है। इसीलिए स्त्री का सदैव सम्मान होना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि कभी कभी कोई कुछ सिखाने वाला होता है जो हमें कुछ निर्देश देता है, ऐसे निर्देश देने वाले 10 लोगों के बराबर एक शिक्षक होता है और ऐसे 10 शिक्षकों के बराबर एक पिता होता है और ऐसे 10 पिता के बराबर एक माता होती है। भीष्मदेव कहते हैं कि माता ही सही में पुत्र के लिए गुरु है, सही गुरु, असली गुरु। और इस सब का अनुभव हम सबको है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें सबसे पहले माता का प्रेम मिला, सारे निर्देश माता से मिले। एक माँ है जो बतलाती है ये पिता है और हम उन व्यक्ति को पिता कहना प्रारंभ कर देते हैं। जब बालक का जन्म होता है वो कुछ नहीं जानता, और जब जन्म नहीं होता तब से माता ही एक गुरु के समान उसका पोषण करती है। गुरु का कर्तव्य क्या है? अपने शिष्य का पोषण करना। एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य का आध्यात्मिक पोषण करता है और ऐसे ही माँ अपने बालक का पोषण करती है, इसीलिए उसे गुरु माना गया है। तो ये हमारे शास्त्रों में स्त्रियों की स्थिति है। ये गलत धारणा है कि शास्त्र स्त्रियों के साथ पक्षपात करते हैं, स्त्रियों को कोई नीची अवस्था देते हैं, स्वतंत्रता नहीं देते, जैसे यहां इस तात्पर्य में वर्णन है, मनुष्य संहिता में लिखा है। ये गलत धारणाएं हैं। मनुष्य संहिता में जो लिखा है उसको ठीक से समझना चाहिए। जैसे भीष्मदेव बताते हैं कि स्त्रियों का सम्मान सदैव होना चाहिए, ऐसी कई स्त्रियों के उदाहरण हैं इतिहास में, शास्त्रों में, जिनको बहुत मान सम्मान मिला, जैसे सती देवी, सीता देवी, सावित्री, इनका सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। सीता देवी का जब वर्णन किया जाता है तो उनकी सतीत्व का वर्णन ये बड़े विस्तार से किया जाता है। सीता देवी ने अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रदर्शित किया। जब हनुमान जी गए थे लंका में, लंका जला दी और सीता से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे कंधे पर बैठिए, अभी आपको ले चलता हूं राम के पास, मैं तो जा ही रहा हूं। लेकिन सीता देवी ने कहा, नहीं, मैं कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। यह सीता देवी का भाव था, लंका में जलकर मरने के लिए तैयार हैं, रावण के हाथों कटने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वेच्छा से किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। ये सीता देवी हैं। श्रीपद मध्वाचार्य सीता देवी का वर्णन करते हुए रामायण की अपनी टीकाओं में चार प्रकार की सतियों का वर्णन करते, किसे सती कहा जाता है, कौन सती है, चेस्ट वाइफ, चार प्रकार की। वो कहते हैं पहली श्रेणी है अधम, अधम सबसे निचली श्रेणी, अधम सती। अधम मतलब मध्वाचार्य समझाते हैं कि ऐसी स्त्री जो किसी दूसरे पुरुष का संग करने की इच्छा रखती है लेकिन उसे अवसर नहीं है, इसीलिए केवल पति के साथ वो सतीत्व के भाव में रह रही है, ये अधम स्त्री मानी गई है। भले वो सती है, भले किसी पर पुरुष का वो संपर्क नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है, लेकिन इच्छा रखती है, और क्योंकि अवसर नहीं है इसीलिए कर नहीं पाती, इसलिए उसे अधम माना गया है। दूसरे प्रकार की स्त्री सती जिसका वर्णन वो करते हैं वो है निकृष्ट। निकृष्ट स्त्री वो है जो करना चाहती है लेकिन पति के भय से वो नहीं करती है, केवल पति से भयभीत रहती है, इसीलिए किसी दूसरे पुरुष का स्मरण नहीं करती है या संग नहीं करती है, इसे निकृष्ट माना गया है। तीसरे प्रकार की मध्यमा, मध्यमा अर्थात ऐसी स्त्री, ऐसी सती जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ अलग अलग संबंध रखती है, अर्थात किसी के साथ पिता का संबंध, किसी के साथ पुत्र का संबंध इत्यादि। और चौथे प्रकार की स्थिति जिसे सती जिसे उत्तमा माना गया है, तो सीता देवी का वर्णन करते हुए मध्वाचार्य कहते हैं कि उत्तमा सती है। उत्तमा अर्थात जो अपने पति के अलावा किसी और का स्मरण कभी नहीं करती, और इसका प्रमाण सीता देवी ने अपने जीवन के अंत में दिया। जिस समय सीता देवी आई, जंगल में भेज दिया था, फिर से वापस आए और रामचंद्र जी ने कहा कि परीक्षा देनी होगी, तो सीता को बड़ा दुख हुआ। पहले परीक्षा दे चुकी थी, अब वन में जा चुकी थी एक धोबी के कहने पर, और अब जब श्री रामचंद्र जी के पास आई तो श्री रामचंद्र जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो सीता ने सोचा इससे अच्छा है कि मैं पृथ्वी में प्रवेश कर जाऊं। और उस समय उसने प्रार्थनाएं की, ये प्रार्थनाएं नहीं थी, ये सीता देवी के भाव को प्रकट किया गया। सीता देवी कहती हैं, यथाहम राघवादन्यम मनसापि न चिंतये तथा मैं माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। वो कहती हैं, यथा हम राघवाद अन्यम, अगर मैंने राघव श्री रामचंद्र के अलावा राघवाद अन्यम मनसापि न चिंतये, मन में भी मैंने कभी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, अर्थात ऐसे नहीं कि हां बाहर तो नहीं किया लेकिन मन में, तो यथा हम राघवाद अन्यम, भगवान श्री रामचंद्र के अलावा अगर मैंने मन में भी किसी पुरुष का स्मरण ना किया हो, तथा मैं माधवी देवी, तो हे पृथ्वी देवी मुझे स्थान दीजिए। और फिर वो कहती हैं, मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्चये तथा मैं माधवी देवी विवरम दातुमर्हति, कि अगर मैंने अपने कर्म, अपने वचन, अपना मन, यथा हम अगर मैंने राम को यथा रामम समर्चये, अगर सब कुछ अर्पित किया है श्री रामचंद्र जी को, तो हे माधवी देवी, हे पृथ्वी देवी मुझे स्थान दीजिए। और फिर पृथ्वी फट गई, दो भाग में हो गई, और पृथ्वी देवी स्वयं स्वर्ण सिंहासन लेकर आई सीता देवी के लिए और उन्हें लेकर चली गई। वैसे भी सीता पृथ्वी की पुत्री थी, पृथ्वी से प्रकट हुई थी, पृथ्वी में ही चली गई। तो ये भाव, ये उत्तमा, तो मध्वाचार्य जी सीता देवी का वर्णन करते समय उत्तमा सती कहते हैं उन्हें। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, असंख्य उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में। सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत में आती है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। सावित्री एक राजा की पुत्री थी, राजा ने कहा कि ठीक है जाओ। वैसे ये कथा बहुत सुंदर संदेश भी देती है। राजा ने कहा जाओ राज्य में, जाओ जहां तुम्हें जो भी पसंद आए उसको चुन लो अपने वर के रूप में। सावित्री जाती है मंत्री के साथ, एक लकड़ी काटने वाला राजकुमार, वैसे वो राजकुमार होता है एक राजा का पुत्र, लेकिन उस समय उनका राज्य चला गया होता है, लकड़ी काट रहा है, उसको चुनती है। वापस आती है, पिता से कहती है, नारद मुनि बैठे होते, नारद मुनि कहते गलती की तुमने, तुमने जिस व्यक्ति को चुना है वो तो मरने वाला है बहुत जल्दी। सावित्री ने कहा मैंने तो चुन लिया एक बार, जिसको मैंने अपने मन में पति माना है, अब मैं किसी और को नहीं चुनूंगी। नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया। वैसे अगर हम लोग भक्ति की दृष्टि से देखें तो हमें भी इस जगत में छोड़ दिया जाता है, जाओ भोग करना चाहते हो भोग करो, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है चुनो। और कोई भाग्यवान ही होता है जो भक्ति को चुनता है, बाकी सब भोग को चुनते हैं। तो सावित्री, विवाह हुआ, वो समय आया, नारद मुनि ने बताया था, 3 दिन तक उसने तपस्या की, कुछ खाया पिया नहीं। चौथे दिन जिस दिन वो समय था वो भी गई अपने पति के साथ। हम संक्षेप में बता रहे हैं, कथा आप सब जानते हैं इसलिए विस्तार से नहीं बता रहे, वैसे कथा विस्तार से है। तो वो जब समय आया, पति की मृत्यु हुई, यमराज स्वयं आए लेने, सावित्री ने प्रणाम किया यमराज को, सावित्री भी पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा कि सत्यवान को छोड़कर कोई भी एक वर मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे जो ससुर हैं उनकी आंखें चली गई हैं, उनकी आंखें दे दीजिए। ठीक है, फिर आगे आगे चले, फिर उन्होंने कहा आप क्यों चल रही हो, सत्यवान को छोड़कर और एक वर मांग लो, दूसरा वर। उसने कहा कि मेरे जो ससुर हैं उनका राज्य चला गया है, उनको राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर आगे चले, फिर सावित्री पीछे पीछे, और एक वर मांगो, सत्यवान को नहीं मांगना, बाकी कुछ भी मांगो। तो उसने कहा कि मेरे जो पिता हैं उनके कोई पुत्र नहीं है, उनको संतान हो जाए। ठीक है, वो भी ठीक है। फिर पीछे पीछे सावित्री, तब थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, यमराज जी भी जरा परेशान हो गए थे कि क्या है ये, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, इतने वरदान दे दिए, आखिरी एक वरदान देता हूं, सत्यवान को नहीं मांगना, बाकी जो वरदान चाहिए मांग लो। ठीक है, आपने सबको दिया, मेरे पिता, मेरे ससुर को राज्य दिया, मेरे ससुर को आंखें दी, पिता को पुत्र दिए, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए, तथास्तु। फिर पीछे पीछे, अब क्या हुआ, अरे आपने ही कहा कि पुत्र होगा, मेरे पति को आप ले जाएंगे तो पुत्र कहां से होगा। तो यमराज ने बेचारे समझे कि ये तो धोखा दे दिया इसने, तो खैर यमराज को देना पड़ा वापस। तो ऐसे उदाहरण है, ऐसे उदाहरण है स्त्रियों के, जिन्होंने अपनी सतीत्व की शक्ति से सूर्य की गति को रोक दिया। एक कोढ़ी पति था, स्पर्श हुआ एक ऋषि से, ऋषि ने श्राप दे दिया कल सूर्योदय के पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। सती स्त्री ने कहा कि मैं सूर्योदय नहीं होने दूंगी, सूर्य की गति को रोक दिया। ब्रह्मा जी को आना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी कि ठीक है सूर्योदय होने दो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। तो फिर ऐसा क्यों है, जैसा वर्णन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कर रहे हैं कि आजकल की जो स्त्रियां हैं वो इस भाव को स्वीकार नहीं करती हैं। इसका कारण है, हमारी वैदिक सभ्यता चली आ रही थी और उसके अनुसार स्त्रियों का सम्मान हो रहा था। स्त्रियां अपने स्थान पर घर में उन चीजों को कर रही थी जो उनके लिए बनी हैं, पुरुष अपने कार्य कर रहे थे और बड़ी आराम से समाज चल रहा था। और तब भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ, बाहर के लोगों ने आक्रमण किया और उस समय से उन्होंने वैदिक सभ्यता का नाश करना प्रारंभ किया। उन्होंने स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में देखा। वैदिक सभ्यता में स्त्री को केवल माता के रूप में देखा जाता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो दूसरी स्त्री है परदारेषु, दूसरे की पत्नी, दूसरे की स्त्री मातृवत, उसको माता की तरह देखना चाहिए। परद्रव्येषु, दूसरे का जो धन है लोष्टवत, कंकड़ पत्थर के समान है। लेकिन ये सभ्यता जहां माता के समान स्त्री को देखा जाता था, सम्मान किया जाता था, मुगलों के आक्रमण से समाप्त हो गई। मुगल आक्रमण करते और स्त्रियों को एक उपहार के तौर में ले जाते। एक प्रसंग है शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया तो एक मुसलमान भी था उनके सेना में, उसने सोचा मुझे शिवाजी को प्रसन्न करना चाहिए, तो जहां आक्रमण किया था वहां की बहुत सुंदर मुसलमान स्त्री को उठा ले आया। और शिवाजी से अगले दिन जब सभा हुई, शिवाजी बैठे थे सिंहासन पर, सब सामने आए, उसने आकर कहा शिवाजी महाराज आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लाया हूं मैं। शिवाजी ने कहा प्रस्तुत करो, क्या तोहफा है? तो तोहफा लाए, उस स्त्री को लेकर आए और सबके सामने उसका जो मुख ढका हुआ था उसको खोल दिया कि ये आपके लिए तोहफा लाया। उसने सोचा कि शिवाजी बड़े प्रसन्न होंगे, मुझे बहुत सारा धन देंगे, मुझे कुछ पद दे देंगे। लेकिन शिवाजी अंतिम राज ऋषि रहे हैं। शिवाजी को, शिवाजी के भी राज ऋषि होने का या ऐसी सभ्यता का पालन करने का कारण एक स्त्री है, उनकी मां। बचपन से उन्होंने रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई उन्हें, तो जैसे ही उस स्त्री को देखा, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, शिवाजी ने कहा कि काश मेरी मां इतनी सुंदर होती तो मैं भी आज बहुत सुंदर होता। ये शिवाजी का भाव था। सुंदर स्त्री को देखकर भी उन्हें अपनी मां का स्मरण आया कि मेरी मां के समान है, और फिर उस व्यक्ति के दोनों हाथ कटवा दिए उन्होंने। उसने कहा तुम लायक नहीं हो, तुमने इन हाथों से स्त्री को छुआ है, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएं। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा वैदिक सभ्यता है जिसका पालन हुआ। तो मुगलों ने आकर स्त्रियों को एक भोग की वस्तु के रूप में प्रकट करना प्रारंभ किया, और फिर कल भी काफी समय तक, क्योंकि मुगलों ने जब हम पर शासन किया तो कैसे शासन किया, मंदिरों में जाते थे, क्योंकि हमारी सभ्यता का केंद्र मंदिर है। उस समय हर स्थान पर मंदिर हुआ करते थे, तो मुगल मंदिरों में जाते, विग्रहों के सामने पुजारी को पकड़ते, उसका गला काट देते और उसके खून से विग्रह का अभिषेक करते सब लोगों के सामने, और सबको दिखाते देखो ये तुम्हारे भगवान है, क्या कर रहे तुम्हारे भगवान, अपने ही पुजारी को नहीं बचा पाए तो फिर कैसे भगवान। इस तरह उन्होंने मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया, और फिर उसके बाद अंग्रेज आए। मुसलमानों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा और अंग्रेजों ने हमारी श्रद्धा को तोड़ा। उन्होंने ऐसे ऐसे चीजों को, जैसे कि कक्षाओं में अलग अलग चीजें पढ़ाना, अलग अलग नियम बनाना, ऐसे कर करके हमारी श्रद्धा को तोड़ दिया, हमारी सभ्यता को समाप्त कर दिया। एक समय ऐसा था कि कृष्ण भक्ति पर, कृष्ण भक्ति को गैर कानूनी घोषित किया गया था अंग्रेजों के जमाने में, सन 1860 ईस्वी में, 1860 या 65 में, ऐसे केस कर दिया किसी ने कोर्ट में जाकर कि ये कृष्ण भक्त, ये लोग एक ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो अनैतिक है, 16,108 रानियों के साथ ये रहता है, ऐसे अनैतिक भगवान की ये लोग पूजा करते हैं, इसीलिए बंद होनी चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा विरोध कृष्ण भक्तों का था, बाकी वो लोग चिंता नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग इतने भक्त, इतने स्ट्रांग नहीं होते। कृष्ण भक्त वो कहते हैं ना कि बाकी सारे लोग काम ही रहते हैं, कृष्ण भक्त काम ही नहीं है, इसीलिए वो बिंदास रहता है, ऐसा बोलते हैं ना यहाँ के भाषा में, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है। जो सिद्धि के कामी हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले यशांत, कृष्ण भक्त निष्काम तैव शांत। तो केस कर दिया कि ऐसे व्यक्तियों को बंद करना चाहिए। ये वैसे अभी कुछ समय पहले पोलैंड में भी ऐसा एक केस हुआ था, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं। पोलैंड में बहुत प्रचार हो रहा है कृष्ण भक्ति का, तो वहां के जो क्रिश्चियन लोग हैं वो घबरा गए कि ये लोग इतना बढ़ जाएंगे तो हम लोग को बाहर भागना पड़ेगा। अब वैसे कृष्ण है भी ऐसे, जहां चले जाते हैं वहां से फिर बाकी लोगों को बाहर निकाल देते हैं, है ना। अगर हमारे हृदय में आ जाए तो हमारे सारे अनर्थों को बाहर निकाल देंगे कृष्ण, ऐसे हैं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए हृदय में लाने का। तो पोलैंड में वो लोग सोचने लगे कि ये तो बहुत बुरा होगा, तो केस कर दिया। और केस किया एक नन ने। नन जानते हैं आप लोग, जो क्रिश्चियन धर्म होता है उसमें ऐसी कुछ सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं महिला स्त्रियां होती हैं जो जीवन अर्पण करती हैं जीसस की सेवा के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए। तो उन्होंने केस कर दिया एक नन ने, और यही केस कि कृष्ण अनैतिक है और हमारे देश में ऐसी अनैतिकता को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे जो भक्त होते हैं वो भी बड़े चतुर होते हैं, आप सब जानते हैं कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है। तो केस शुरू हुआ तो हमारे जो वकील थे उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट से कि माय लॉर्ड, मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं, ये केस ठीक है, हमने जो भी आप कहना चाहें ठीक है, लेकिन ये जो नन है, ये लोग जब नन बनती हैं, जैसे वो साधारण स्त्री है वो सब कुछ समर्पण करती है, तो उस समय एक इनको पत्र पर साइन करना होता है, एक प्रतिज्ञा लेनी होती है और वो प्रतिज्ञा पत्र पर साइन करना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो नन है अभी यहीं कोर्ट में खड़े होकर उस प्रतिज्ञा को दोहराए जो उन्होंने साइन किया है, जो स्वीकार किया है। उस नन ने मना कर दिया, कहा मैं नहीं दोहराऊंगी जज के सामने, कहा मैं नहीं दोहराऊंगी। वकील ने कहा कोई बात नहीं, मैं दोहराता हूं, मेरे पास है पूरा पत्र, क्योंकि हर एक के लिए एक ही होता है। तो उसने उसमें से एक लाइन पढ़ी कि मैं आज से जीसस को अपना पति स्वीकार करती हूं। ये हर एक नन को लिखना पड़ता है, ये नियम है। तो हमारे वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, ये कह रही हैं कि कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, पत्नियां हैं, इसलिए वो अनैतिक हैं, लेकिन दुनिया में करोड़ों नन हैं, अभी लाखों नन हैं, और वो सब जीसस की पत्नियां हैं इस पत्र के अनुसार, तो फिर अनैतिक कौन है, कृष्ण या जीसस? तो मजिस्ट्रेट ने कहा केस डिसमिस, कोई चर्चा नहीं एकदम बंद करो ये सब चर्चा। लेकिन उस समय अंग्रेजों के समय ऐसे हो नहीं पाया, तो 10 साल के लिए कृष्ण भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सारे कृष्ण भक्त मंदिर बंद कर दो, सरकार ने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया था बंद करो। तो इस तरह से हमारी श्रद्धा को, हमारी सभ्यता को तोड़ दिया गया और स्त्री को एक भोग की वस्तु के रूप में प्रकट किया गया। वैसे स्त्री का प्रमुख भाव मातृत्व का भाव है, माता है, पुरुष जन्म नहीं दे सकता, ये अधिकार, ये भाव या ये प्रशंसा केवल स्त्री के लिए है। भगवान ने केवल स्त्री को यह भाव दिया है, केवल स्त्री को यह अधिकार दिया है, इसलिए मातृत्व भाव ये स्त्री के लिए एक आभूषण की तरह है। लेकिन जब भौतिकता बढ़ जाती है, भौतिकवाद बढ़ जाता है, इंद्रिय भोग बढ़ जाता है, तो स्त्रियों को ये मातृत्व ये बोझ लगने लगता है, ये बंधन लगने लगता है, और फिर वो स्त्री मुक्ति का वर्णन करती हैं, स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाते हैं। तो स्त्री मुक्ति आंदोलन कुछ नहीं है, केवल भौतिकता का एक अलग रूप है, भोगवाद का अलग रूप है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र के अनुसार स्त्री को स्वतंत्रता तब मिलती है जब वो अपने पति को समर्पण करती है, और यही सिद्धांत भक्ति का है। अगर हम इस सिद्धांत को गलत मानते हैं कि स्त्री को अपने पति को समर्पण करना चाहिए तब वो सही दृष्टि में स्वतंत्र है, अगर इस सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते तो हम भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति का सिद्धांत क्या है, भक्ति का सिद्धांत है कि केवल एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, और अगर बाकी सब प्रकृति हैं और अगर बाकी सब कृष्ण को समर्पण नहीं करते तब तक वो मुक्त नहीं हो सकते। यही सिद्धांत भक्ति का है। तो कृष्ण सबके पति हैं, अगर हम अपने पति श्री कृष्ण स्वामी श्री कृष्ण को समर्पण करते हैं तभी सही स्वतंत्रता है। अगर हम सोचते हैं कि समर्पण करने में बंधन है बाधा है तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, केवल इसी जगत में फंसे रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए सही स्वतंत्रता समर्पण में है। जब हम समर्पण करते हैं, जब मारते हैं अपने आप को, तब सही दृष्टि में जीते हैं। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें अपने आप को मारना चाहिए, अर्थात अपनी इच्छाओं को, अपनी भोग प्रवृत्ति को मारना चाहिए, ताकि हम कृष्ण की सेवा करके सही दृष्टि में जीवन जी सकें। इसीलिए अगर जीना है तो अपने आप को मारना चाहिए, स्वतंत्र होना है तो समर्पण करना चाहिए राधा गिरिधारी जी के चरण कमलों में, तब हम सही दृष्टि से स्वतंत्र हो सकते हैं। और ये वैदिक सभ्यता है। तो ऐसे स्त्रियों का भाव था, ऐसे स्त्रियों का स्थान था वैदिक सभ्यता में। लेकिन मुगलों के आक्रमण से, अंग्रेजों के आक्रमण से, फिर धीरे धीरे, और अब भी हम लोग उसको पालन कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ कि 15 अगस्त को अचानक भारत स्वतंत्र हो गया? आप जानते हैं क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को? सब कहते हैं भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे ट्रांसफर ऑफ पावर्स कहते हैं, अर्थात जैसे अंग्रेज इस देश को चला रहे थे उसी तरह इस देश को आगे चलाने के लिए केवल पावर शक्ति ट्रांसफर कर दी गई, बस कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई। इसीलिए आज भी हम लोग उन्हीं सिद्धांतों पर भारत को चला रहे हैं। बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं। आज भी हम लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं तो हमें पढ़ा लिखा माना जाता है, अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो हमें एकदम साइड में खड़े हो जाओ, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम हिंदी बोलते हो हट जाओ। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है, हम लोग जब इन कपड़ों में किसी बड़े ऑफिस में जाते हैं, तो एक बार बहुत साल पहले हमें ध्यान है बंबई में ही नरीमन पॉइंट में हम एक ऑफिस में गए थे, तो जैसे ही अंदर घुसे वहां पर रिसेप्शनिस्ट बैठी होती हैं, ऑफिस में घुसते एक रिसेप्शन बना होता है, तो उसने देखा और उसको लगा कौन आ गया, पता नहीं क्या है क्या है, ऐसे पूछते हैं वो लोग, तो हमें पता है कि ये लोग ऐसे बात करते हैं। तो जैसे ही उसने कहा तो हमने थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल दी उनको कि मैडम आई वुड लाइक टू मीट मिस्टर पाटिल, इज ही देयर इन द ऑफिस? वो जैसे ही उसने सुना हाँ प्लीज प्लीज बैठिए 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 आप बैठिए, नहीं तो उसका भाव था चलो बाहर जाओ कोई नहीं है ऑफिस में। तो देखिए केवल इंग्लिश बोलने से ये अभी तक अंग्रेज हमारे दिमागों पर राज्य कर रहे हैं। अंग्रेजों के समय में ऐसा था जो इंग्लिश बोलता था उसको साहब बोलते थे, वो साहब है और बाकी सब बेकार आदमी है, और आज भी वही चल रहा। तो वही सभ्यता जो अंग्रेजों ने नाश कर दी हमारी और एक अपनी अलग सभ्यता को प्रस्तुत किया, उस कारण से ये जो स्त्रियों का विनाश हो रहा है या स्त्रियां पतन की ओर जा रही हैं, ये सब उसी कारण से है। और इसीलिए आज स्त्रियां सोचती हैं कि अगर हम पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे तो हमारी मुक्ति होगी। क्यों करना है? स्त्री को पुरुष की नकल करने की क्या आवश्यकता है? स्त्री का अपना सम्मान है, स्त्री का अपना स्थान है, उसे वो कार्य करने चाहिए। क्या आवश्यकता है पुरुष की नकल करने की? क्यों पुरुष के जूतों में पांव रखना है? अपना खुद का स्थान बनाना चाहिए स्त्री को, जो सभ्यता ने दिया है, वेदों ने दिया है, शास्त्रों ने दिया है। और इसीलिए स्त्री बड़ी सम्माननीय है। लेकिन जब इस सभ्यता को त्यागती है, पुरुष के साथ कंधा मिलाकर चलती है, अपने सम्मान को खो बैठती है। हम लोग देखते हैं आजकल दुनिया में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। हम एक बार कहीं पर जा रहे थे तो बस में वो टीवी चल रहा था, तो हमने देखा देखना नहीं चाहिए, आप लोग आंखें बंद करना जब ऐसी स्थिति आए, लेकिन हम कर नहीं पाए, बहुत तेज चल रहा था वो, तो वो कोई कंपटीशन में कोई स्त्री जीत गई थी, क्या पता नहीं मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया, मिस बहुत सारी मिस हैं, और सब मिस कर देती हैं लाइफ को उस कारण से, तो और वो ऐसे खुश हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, वो अपने मुंह को कभी पकड़ रही है, कभी सर को पकड़ रही है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे समसिद्धिम हरितोषणम, जीवन की समसिद्धि प्राप्त हो गई उसको। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उसको पता नहीं होता क्या करना, जैसे हनुमान जी जब सीता देवी के लिए ढूंढने गए थे तो रावण के महल में पहुंचे तो वहां मंदोदरी को देखा, मंदोदरी बहुत सुंदर थी। एक स्थान पर दक्षिण भारत में वर्णन किया जाता है कि दरअसल सीता देवी मंदोदरी की पुत्री थी, और रावण को यह श्राप था कि अगर पहली जो भी तुम्हारी संतान होगी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो जैसे ही सीता हुई, रावण ने अपने सेनापति को दिया, इसको जाकर मार डालो, नहीं तो ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो उसने देखा बड़ी सुंदर बच्ची है, इसको क्या मारना, तो उसने डब्बे में बंद करके जमीन के नीचे गाड़ दिया। और फिर जब जनक महाराज ने वो हल चलाया तो सीता देवी, ऐसे कहा जाता है, ऐसे कथा है। तो इसलिए मंदोदरी और सीता देवी का चेहरा भी मिलता जुलता था, तो बहुत सुंदर थी। तो जैसे ही हनुमान जी ने देखा, उन्हें लगा कि मुझे सीता मिल गई, बहुत खुश हो गए, जोर जोर से बंदर हैं, जोर जोर से कूचने लगे, अपनी पूंछ को पटकने लगे और चूमने लगे अपनी पूंछ को, रामायण में वर्णन है, पटक पटक कर चूमने लगे आनंद में। तो ऐसे ही वो, हमने देखा कि वो स्त्री, उसको तो ऐसे कि जैसे जीवन की समसिद्धि मिल गई, लेकिन क्या है वो, स्त्रियां अपने इतने अंग का प्रदर्शन करती हैं उन प्रतियोगिताओं में, जिसके कारण जितने भी देखने वाले हैं कोई उनको आदर सम्मान से नहीं देखता है, कोई उनको प्रणाम नहीं करता है। आज हम लोग केवल सीता देवी का नाम लेते हैं हमारे हाथ जुड़ जाते हैं आदर से सम्मान से, सती देवी का नाम लेते हैं आदर से जुड़ जाते हैं, लेकिन ये लोग क्या इनको कोई आदर देता है सम्मान देता है, लेकिन केवल धन और थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए अपने मान सम्मान को त्याग देती हैं स्त्रियां। इसीलिए वेदों का पालन होना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए कृष्ण भक्ति बहुत आवश्यक है, भक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। भक्ति क्या है, कृष्ण के प्रति समर्पण, एक ही पति है, एक ही स्वामी है, उनके प्रति समर्पण, ये भक्ति है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र मतलब वो श्लोक जो सारे ग्रंथ के विषय को बताता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है, तो इस श्लोक में वो दो प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं, एक साधारण भक्ति और एक शुद्ध भक्ति। आप लोगों की आज्ञा हो तो एक 5-10 मिनट केवल भक्ति के विषय में बोलना चाहते हैं, आज्ञा है सबकी, आज्ञा है तो हरि बोल कहिए, थोड़ा समझ में आएगा। ऐसे जो व्यासासन पर बैठे होते हैं ना, वो जबरदस्ती कर देते हैं, आप लोगों को नहीं भी सुनना है तो हरि बोल बोलना पड़ता है, क्या करें, मन में आ रहा है कि जाए प्रसाद ले, इतना देर हो गई, लेकिन अब जो व्यासासन पर बैठा है उसका तो अपमान नहीं कर सकते, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती ही सही, सुन लीजिए। तो रूप गोस्वामी इस श्लोक में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुभक्तिशील, इसमें कहते हैं कि दो प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है, दो लक्षणों का वर्णन किया है, एक स्वरूप लक्षण और दूसरे तटस्था लक्षण। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम इस स्वरूप लक्षण है, और अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम ये तटस्था लक्षण है। स्वरूप लक्षण भक्ति है, और जब उसमें तटस्था लक्षण जोड़े जाते हैं वो शुद्ध भक्ति हो जाती है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, हम लोग सब भक्त हैं, हमें जानना चाहिए भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, फिर तो हम उसको पालन करने का प्रयास करेंगे। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुशीलनम, अनु शब्द का अर्थ होता है पालन करना। हम लोग सब रागानुगा कहलाते हैं, रागानुगा, रागानुगा या रूपानुगा, रागानुगा नहीं, रूपानुगा, रूपानुगा मतलब रूप गोस्वामी का अनुगमन करते हैं, रूपानुगम। तो अनु मतलब पीछे पीछे चलना, और अनु का एक और अर्थ होता है सतत। भगवद गीता में भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, कि मेरा सतत स्मरण करते हुए युद्ध करो अर्जुन, वो भक्ति है। तो अनु मतलब पीछे पीछे चलना और सतत। अनु का और एक अर्थ होता है प्रेम से, और शील शीलनम मतलब क्रिया, सोचना, जप करना, कोई कार्य करना, ये शील शब्द से आता है। तो अनुशीलनम मतलब सतत किसी के आदेशानुसार या किसी के पीछे पीछे चलते हुए प्रेम से क्रिया करना, कार्य करना, स्मरण करना, जप करना इत्यादि, ये अनुशीलनम है। तो किसका करना चाहिए? कृष्णानुशीलनम, केवल कृष्ण का। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णानुशीलनम। तो अगर केवल कृष्ण का है तो प्रश्न ये आता है कि फिर बाकी सब का क्या होगा? राम है, वराह है, नरसिंह है, और अन्य अवतार हैं भगवान के, फिर उनका सब कोई पालन नहीं करना है, उनकी भक्ति नहीं करनी है, उनकी पूजा नहीं करनी है। हाँ, गणेश इत्यादि उनकी तो करनी ही नहीं है, लेकिन बाकी का क्या? जीव गोस्वामी समझाते हैं कि कृष्ण शब्द में सब कुछ आता है, उनके विस्तार, उनके अंश, उनके भक्त, उनसे संबंधित हर चीज, गुरु, तुलसी महारानी, गाय, ये सब आराध्य हो जाती हैं। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम। जैसे श्री कृष्ण आराध्य हैं, ऐसे ही उनका धाम वृंदावन भी आराध्य है। तो इसलिए जब कृष्ण कहा जाता है तो सब आते हैं, सबकी भक्ति करना। देवी देवता नहीं, केवल कृष्ण, कृष्ण के विस्तार, उनके अंश, और गुरु, क्योंकि गुरु उनके प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये कृष्णानुशीलनम। तो अगर कोई कृष्ण का सतत स्मरण करता है, इस परिभाषा से वो भक्त हो जाता है। तो भक्ति क्या है? कृष्ण का सतत स्मरण करना, अनुशीलनम, सतत स्मरण। तो सही है ना? आप लोग मानते हैं सब, कृष्ण का सतत स्मरण करना भक्ति है। हिरण्यकश्यपु और शिशुपाल ने भी किया, कंस ने किया। कंस तो इतना स्मरण करता था, हम लोग तो उतना नहीं कर सकते। भय से हमेशा जब दो सैनिकों को आते देखता था तो वो कृष्ण बलराम आ गए, अपने चेहरे को शीशे में देखता था तो गला कटा हुआ दिखाई देता था, हाय हाय कृष्ण ने मुझे मार दिया। हर समय सोते सोते उड़ जाता था कृष्ण का स्मरण। तो इतना उसने स्मरण किया, क्या वो शुद्ध भक्त है? कंस या शिशुपाल? युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया सातवें स्कंद में कि हमने सुना है ये शिशुपाल जब बोल भी नहीं पाता था तब से कृष्ण की निंदा कर रहा है, फिर ये मुक्त कैसे हो गया? तो क्या शिशुपाल और कंस को हम लोग शुद्ध भक्त कहेंगे? लेकिन वो तो सतत स्मरण कर रहे थे। हमारे से अच्छा अनुकूलेना, क्योंकि अनुकूल भाव से नहीं था। अगर अनुकूल भाव से स्मरण किया जाए कृष्ण का, तब वो भक्ति कहलाती है। अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम, उसको भक्ति कहते हैं। इसकी और भी कई व्याख्याएं हैं, आज समय नहीं। और अन्याभिलाषिता शून्यम, कृष्ण के अलावा, कृष्ण भक्ति के अलावा अगर कोई भी अभिलाषा है, इच्छा है, उसको भक्त नहीं मान सकते, अगर वो कभी भी हृदय में इच्छा रखता है। जैसे काम, काम क्या कहते हैं? काम किसे कहते हैं? कृष्ण भक्ति के परे जो भी चीज है वो काम है। फिर चाहे धन कमाने की इच्छा हो, मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा हो, स्त्री संग करने की इच्छा हो, जो भी है वो सब काम है। तो इस परिभाषा से जो भी व्यक्ति कृष्ण को पुकारता है या कृष्ण की भक्ति अपने लिए करता है वो भक्त नहीं है। तो फिर द्रौपदी का वर्णन आता है, जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे तो द्रौपदी कृष्ण को पुकार रही थी, शुद्ध भक्ति तो नहीं थी, कृष्ण को भक्ति करने के लिए तो नहीं पुकार रही थी कि आप आइए मैं आपकी सेवा करूं, अपने बचाव के लिए पुकार रही थी, मेरे शरीर की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे मान सम्मान की रक्षा करो, ये तो भौतिक है। तो क्या द्रौपदी भक्त नहीं है? ब्रजवासियों ने पुकारा, आग लग गई, कृष्ण कृष्ण बचाओ, बारिश आ रही है, कृष्ण कृष्ण बचाओ, तो क्या भक्ति नहीं है? ब्रजवासी भक्त नहीं है? द्रौपदी भक्त नहीं है? नहीं है, द्रौपदी भी भक्त है और सारे ब्रजवासी भक्त हैं। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी में, अगर भक्त ऐसी कभी कभार कोई इच्छा कर भी देता है तो वो शुद्ध भक्ति में कोई बाधा नहीं है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने अन्य अभिलाषिता शब्द की, अन्य अभिलाषा कहा होता तो फिर सब गड़बड़ हो जाता। अभिलाषिता मतलब, अभिलाषा मतलब इच्छा करना, और अभिलाषिता मतलब इच्छा करने की प्रवृत्ति, बार बार इच्छा करते रहना। जैसे द्रौपदी ने हर बार कृष्ण को नहीं पुकारा था, जंगल में जा रहे, कष्ट हो रहा है, कृष्ण आओ बचाओ, और कहीं जा रहे हैं वो कीचक मारने के लिए आ रहा है, कीचक उसके पीछे पड़ा है, कृष्ण आओ बचाओ, नहीं, हर समय नहीं, लेकिन जब बहुत आवश्यक था तब। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सही है, इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो हमें भी अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर राधा गिरिधारी जी के चरणों में समर्पण करना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने जीवन को सफल कर सकें और वो जो वैदिक सभ्यता है जिसका नाश हुआ है उसको पुनः स्थापित कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई टीका टिप्पणी? हाँ जी, हाँ हाँ, समय नहीं था इसलिए ज्ञान कर्म धनावृतम, ज्ञान कर्म आदि को भी त्याग देना चाहिए, अर्थात हमारी भक्ति मिश्रित नहीं होनी चाहिए। ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, जैसे देवता हैं वो कर्म मिश्रित भक्त हैं, तो ऐसी भी भक्ति नहीं होनी चाहिए, उसको भी त्याग देना चाहिए। ये ज्ञान कर्म धनावृतम। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, यहां सदस्य। हाँ, प्रश्न है कि पतिव्रता स्त्री की इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पति, अपने सूर्य को भी उसने रोक लिया था, तो यहां क्यों नहीं कर पाई? ये ब्राह्मणी है, ये एक भाव प्रकट कर रही है। यहां पर सती स्त्री का भाव उसने प्रकट किया कि मैं मर जाना मेरे लिए अच्छा है, और ये एक प्रथा होती थी। प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि एक सती करके प्रथा हुआ करती थी पहले समय में, कि स्वयं अपनी इच्छा से पत्नी पति के साथ चिता में जल जाती थी, और क्योंकि उसके सतीत्व की इतनी शक्ति होती थी, उसको अग्नि का कोई अग्नि उसको जलाती नहीं थी, अर्थात कष्ट नहीं देती थी, जल जाती थी लेकिन कष्ट नहीं देती, क्योंकि ऐसी स्त्रियों के लिए पति के बिना रहने से अच्छा है अग्नि की, अग्नि में जल जाना, वो सहन कर सकते लेकिन पति के बिना नहीं। तो एक सती का वर्णन, ये बहुत पहले वैदिक सभ्यता में था, मगर जब इसका दुरुपयोग होने लगा, और ये स्वेच्छा से होता था, हर स्त्री के लिए नहीं था, ऐसा नहीं कि जिस भी स्त्री का पति मरा उसको जलना है, कुंती महारानी नहीं गई, सत्यवती नहीं गई, तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें, बहुत से उदाहरण हैं कि जिसमें उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो वो अनुमति थी अपनी स्वेच्छा से अगर कोई जाना चाहे, लेकिन बाद में लोगों ने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, नहीं जाना उठा के फेंक दो उसको अग्नि, वो बेचारी चिल्लाती रहे मार दिया, और फिर बोले सती हो गई। तो इस कारण से उसको रोक दिया गया ये प्रथा को, लेकिन पहले ये प्रथा थी कि सती अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, उसका इतना सतीत्व की शक्ति होती थी। तो यहां जो वर्णन है कि अपने पति को नहीं बचा पा रही है, ये सती ब्राह्मणी का वर्णन, एक ब्राह्मणी का वर्णन है जो एक भाव प्रकट कर रही है। हाँ जी प्रभु, प्रश्न ऐसा है कि प्रभुपाद ने समझाया कि सदैव अधीन रहना चाहिए, विवाह करना चाहिए स्त्रियों को। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कहते हैं स्त्री को विवाह करना ही चाहिए, कन्यादान करना चाहिए। ये कन्यादान की प्रथा है, कन्याओं को दान में दिया जाता था। जब बलि महाराज के पास वामन देव आए थे छोटे से बालक ब्राह्मण के रूप में, तो उन्होंने पूछा, अरे तुम क्या ये जमीन मांग रहे हो, तीन पग भूमि क्या चाहिए तुम छोटे से बालक को, क्या चाहिए तुम्हें, धन चाहिए, तुम्हें गांव चाहिए, तुम्हें ब्राह्मण स्त्रियां चाहिए, अविवाहित स्त्रियां मैं तुम्हारा विवाह करा देता हूं। तो ये कन्यादान की, तो स्त्रियों को विवाह होना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि इस्कॉन में भी हम लोग देखते कई माताजी लोग विवाह नहीं करते हैं, ऐसे ही रहते हैं, आश्रम में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो क्या ये सही है? प्रभुपाद के अनुसार तो ये सही नहीं है, स्त्रियों को विवाह करना ही चाहिए। हाँ, अगर विवाह के बाद पति की मृत्यु हो जाती है या कुछ होता है तब फिर ठीक है, वो बिना किसी दूसरे पुरुष का संग किए, बिना पुनः विवाह किए वो अगर किसी आश्रम में रह रही हैं और भगवान की सेवा में लगी हैं तो ठीक है। इसका कारण ये है, कोई स्त्रियों के साथ पक्षपात नहीं है कि प्रभु जी तो ब्रह्मचारी बन सकते हैं पुरुष लोग और माताजियों के लिए कोई ब्रह्मचारिणी आश्रम नहीं है। वैदिक सभ्यता में कोई ब्रह्मचारिणी आश्रम नहीं। हाँ, हमारे इस्कॉन के बाहर के मंदिरों में पाश्चात्य देशों में ब्रह्मचारिणी आश्रम भी है और जो टेंपल मैनेजमेंट है उनको बहुत कठिनाई होती है ब्रह्मचारी आश्रम और ब्रह्मचारिणी आश्रम दोनों को बनाए रखने के लिए। वहां पर अलग कल्चर है, वहां सभ्यता अलग है, वहां वो लोग बिना शादी के ऐसे ही रहते हैं, तो फिर ठीक है कम से कम कुछ तो नियम का पालन करो। लेकिन भारत में ऐसी सभ्यता नहीं है, वहां पर लिव इन अरेंजमेंट है, लड़का लड़की साथ में आते, दो तीन साल रहकर देखते हैं कि हमारी केमिस्ट्री जमेगी कि नहीं एक दूसरे के साथ, और जब नहीं लगता तो ठीक है तुम अपने घर वापस जाओ, मैं अपने घर वापस जाती, किसी और से शादी या किसी और से शादी। ये वहां की सभ्यता है, सभ्यता नहीं है, ये पशु प्रवृत्ति है, और वो भारत में भी आ रहा है, भारत में भी लोग इसका पालन करना चाह रहे हैं। तो हमारे भारत की जो सभ्यता है वो इसको अनुमति नहीं देती है, स्त्रियों को विवाह करना ही चाहिए, और चाहे वो इस्कॉन में हो, इस्कॉन में होकर तो उन्हें निश्चित करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस वैदिक सभ्यता का प्रचार करते हैं और हम ही लोग पालन नहीं करेंगे तो ठीक नहीं, तो करना तो चाहिए ही। हाँ, किसी कारणवश वो कोई विशेष स्थिति में ऐसा हो सकता है, शास्त्रों में भी उदाहरण है, कई सन्यासिनी हुई हैं जिन्होंने सन्यास ग्रहण किए, बड़ी बड़ी गंगा माता गोस्वामिनी इत्यादि, लेकिन वो बहुत दुर्लभ उदाहरण है, उनके उदाहरण को लेकर हमें अपने जीवन को ऐसे नहीं यापन करना चाहिए। ठीक है, और कोई? हाँ जी, प्रभु पुत्र दीजिए। पति के यस माता देवहूति ने कि स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, वो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, जो माता देवहूति ने बताया वो मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति ये कहती है कि स्त्री को हमेशा किसी के अधीन रहना चाहिए, जैसे जैसे आपने बताया शुरुआत में पिता के, फिर जब पति के, और फिर जब पति संन्यास ले ले या मृत्यु हो जाए तो बड़े पुत्र के अधीन। तो ऐसा क्यों बताया, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हरेक योनि का एक स्वभाव होता है। हम आत्मा हैं, वैसे हमें कुछ लेना देना नहीं कि कभी हम लोग, हो सकता है कभी हम लोग स्त्री शरीर में रहे हों, आज हम लोग पुरुष शरीर में हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम पुरुष हो गए और वो स्त्री हैं। आत्मा की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है, लेकिन जब शारीरिक स्त्री शारीरिक स्तर पर देखा जाता है तो हरेक योनि का एक स्वभाव होता है। तो पुरुष योनि का एक स्वभाव दिया गया है, स्त्री योनि का एक स्वभाव दिया गया है कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे दी जाए तो फिर उत्पात हो सकता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा बच्चा है, अब अगर बच्चे को आप खेलने के लिए छोड़ देते हो कहीं पे, वो सड़क पे चला जाता है, गाड़ी आती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए बच्चे को बड़ा संभाल कर रखा जाता है, जाने नहीं दिया जाता, माता हमेशा ध्यान रखती जाए नहीं। तो क्या ये संभाल कर रखना, क्या ये पक्षपात है बच्चे के लिए? कि बच्चे को जाने नहीं दे रहे हैं, बच्चे के लिए पक्ष नहीं, बच्चे का संरक्षण है, क्योंकि बच्चे का स्वभाव वो है, बच्चा नहीं जानता वो चला जाएगा। ऐसे ही स्त्री योनि का स्वभाव है, तो वो बहुत जल्दी, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि किसी भी बहकावे में आना इत्यादि, वो उनका स्वभाव बना है, बड़े कोमल होते हैं हृदय उनका। आप देखिए कभी भी अगर जैसे हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले बाहर जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, पति पत्नी दोनों हो तो वो पत्नी को पहले बोलते हैं जरा आप ले लीजिए, तो पत्नी का हृदय कोमल, अरे बेचारा बोल रहा है ले लीजिए, तो वो ले लेता है। तो माताओं का हृदय कोमल होता है, इसीलिए किसी भी चीज को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती हैं वो, और यही कारण है कि मनुस्मृति कहती है कि उन्हें हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। अन्य भी कई कारण हैं जिनका वर्णन मनुस्मृति में हुआ है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता में अगर हम बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दें, लेकिन इसको गलत प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्त्रियों को दबा के रखो, दबा के नहीं रखना है, पूर्ण स्वतंत्रता थी वैदिक सभ्यता में, इतनी स्वतंत्रता थी स्त्रियों को कि जिस स्थान पर वो रहते थे अपने ही घर में, वहां दिन के समय उनके पति भी नहीं जा सकते थे, अगर पति को भी जाना है तो उनको किसी छोटे से बच्चे को भेजना पड़ता था कोई संदेश, वो खुद नहीं जा सकते थे, इतना मान सम्मान स्त्री को दिया गया, तो फिर कहां उनको दबा कर रखा जा रहा है। लेकिन ये गलत धारणाएं लोगों ने फैला दी कि देखो शास्त्र में बोलते स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, तुम्हें स्वतंत्र हो जाना चाहिए, और आज क्या कर रही है स्त्री स्वतंत्र होकर, शराब पीना, सिगरेट पीना, धन कमाना, गलत काम करना। आप देखिए, आप लोग भाग्यवान हैं, आप सब भक्त हैं, आपने शायद ये सब सुना नहीं होगा। हम लोग प्रचार के लिए कई जगहों पे जाते हैं तो हम लोग ये सब देखते हैं सुनते हैं। अभी दो दिन पहले हम गोवा में थे, गोवा में रथ यात्रा हुई, तो गोवा रथ यात्रा में थे वहां पर, और हमें प्रवचन देने के लिए कहा, तो हम वहां पर दे रहे थे तो ऐसे लोग बैठे थे कि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग कृष्ण के बारे में सुनने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए बाहर जब जाते हैं, बेंगलोर वगैरह बड़े बड़े शहरों में, बंबई में भी होता होगा, आप लोग अपने को सीमित कर लिया आपने कृष्ण भक्ति में, इसलिए बाहर नहीं दिखता है कि स्त्री के बाहर जाने से, स्त्री का आभूषण क्या है, लज्जा। एक स्थान पर लिखा गया है कि अगर स्त्री की जो लज्जा है ये एक वॉल्व के समान है, जैसे नल होता है उसका, जब तक वो नल बंद रहता है तो पानी नहीं गिरता, एक बार नल खोल दिया, वॉल्व खोल दिया, धार 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 पानी, तो ऐसे स्त्री की लज्जा है, जब तक वो अपने आप को लज्जा में रखती है, स्त्री के आभूषण है लज्जा, जब तक उस आभूषण में रहती है सब कुछ ठीक रहता है, जैसे उसको त्याग देती है तो फिर सारे नाश का कारण होता है, वर्ण संकर उत्पन्न होता है, आचार्यों ने कहा है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं भगवत गीता में, स्त्रियों का रक्षण करना चाहिए, नहीं किया तो वर्ण संकर हो जाएगा। तो ये कारण है कि शास्त्र में इन चीजों को दिया गया है, इसलिए शास्त्र परफेक्ट है, एकदम सही है। अगर केवल हम उनका आंख बंद करके पालन करेंगे तो बड़े सुखी रहेंगे, लेकिन अगर उसमें से हम लोग कुछ ढूंढने की प्रयास करेंगे इधर उधर, हरि बोल हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, क्षमा चाहते हैं बहुत देर तक आप लोगों को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। थोड़ा माताजियों के विषय में कुछ कहा अगर किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहते हैं।